मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 5 मार्च 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और साथ ही स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 15 से 29 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस में एडमिशन लिया है। इन दोस्तों के नाम हैं उमर खायम कटिहार बिहार से और पिंकू कुमार गांव चकमूसा जिला पटना बिहार से। दोस्तों आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं जो UPSC का भी इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें जो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में कुछ जानकारियां देना चाहूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। कल मंत्रिमंडल की बैठक हुई और आप जानते हैं बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक होती है और मंत्रिमंडल कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय बहुत ज्यादा मायने रखते हैं क्योंकि ये मान करके चली कि वही सरकार के निर्णय हैं। हालांकि उसमें कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जिन्हें आपको विधेयक के रूप में संसद में पेश करना पड़ता है, लेकिन चूंकि संसद में सीधी सी बात है कि सरकार का बहुमत होता है तो वहां मुश्किल नहीं जाती है, बशर्ते कि राज्यसभा में कोई अड़चन ना आए, क्योंकि अभी जो हमारी सरकार है राज्यसभा में उसके पास स्पष्ट बहुमत नहीं है। इसमें 2-3 इम्पॉर्टेंट निर्णय लिए गए हैं मित्रों, उसके बारे में विस्तार से अभी बात करने की मैं जरूरत नहीं समझता, लेकिन ये जो निर्णय है ये आपके दिमाग में दर्ज हो जाने चाहिए। पहला तो यह है कि सरकार ने घोषणा की है कि जो 10 सरकारी बैंक हैं उनको एक दूसरे से मर्ज करके 4 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, वो 4 बैंक बन जाएंगे। और ये जो 10 बैंक हैं इनमें से मैं कुछ के आपको नाम बता देता हूं। पंजाब नेशनल बैंक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, केनरा बैंक है, सिंडिकेट बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, आंध्रा बैंक है, कॉरपोरेशन बैंक है, इंडियन बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, इनका मर्ज हो जाएगा और ये 4 मुख्य बैंक बन जाएंगे। इसके पीछे कारण क्या होते हैं, सरकार की नीति क्या है, इसके बारे में आज एक एडिटोरियल कमेंट भी है बिजनेस स्टैंडर्ड का, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप देख लेंगे। इससे पहले भी बैंकों का विलय हुआ है और इसके बारे में हम लोगों ने काफी बातें भी की हैं, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इसी के साथ ही सरकार ने यह भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसमें 72 चेंजेस किए जा रहे हैं। 72 अब ये विधेयक जाएगा और विधेयक के बाद फिर कि उसमें से क्या परिवर्तन होते हैं इसलिए अभी उसकी बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका जो मूल चरित्र है वो ये है कि किस तरह से कंपनियों का जो कारोबार होता है रूल्स रेगुलेशंस थोड़े से ढीले किए जाएं। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन है, उसकी वजह से सच पूछे तो कंपनियां बड़ी कसमसाहट सी महसूस करती हैं। और अगर भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का वातावरण बना करके फॉरेन से अधिक इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि कंपनीज लॉज को थोड़े से सरल बनाए जाए, तो उसी की तरह उसी दिशा में उठाया गया यह एक कदम है। एक जो और महत्वपूर्ण निर्णय है दोस्तों वो ये है कि आपको मालूम है कि एयर इंडिया के सरकार उसको बेचने के बारे में निर्णय ले चुकी है, तो अब उसने ये कहा है कि इसकी जो 100% हिस्सेदारी है अगर हमारे जो NRIs नॉन रेजिडेंस इंडियन हैं जो विदेशों में रह रहे हैं वो भी इसमें 100% हिस्सेदारी कर सकते हैं। पहले जो इनकी हिस्सेदारी थी वो 50% से कुछ कम थी, तब उसे 100% तक कर देने का निर्णय लिया है। और इस निर्णय के पीछे आप एक बात कह सकते हैं क्योंकि सरकार ने इससे पहले भी एयर इंडिया को बेचने की कोशिश की थी लेकिन उस समय खरीदार नहीं आए थे, तो सरकार उन कमियों को दूर करने की कोशिश कर रही है ताकि इस बार एयर इंडिया मतलब बिक जाए, क्योंकि लगातार एयर इंडिया बहुत जबरदस्त घाटे में चल रही है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय थे। दोस्तों आज के अखबारों में आपने पढ़ा और न्यूज में भी सुना होगा कि तालिबान ने हमला किया अफगानिस्तान के सैनिक और पुलिस और कुछ नागरिकों पर और उसमें कुछ नागरिक मारे गए। अब आप देखिए कि कुछ दिन पहले ही तालिबान और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ था और उस समझौते के केंद्र में यही था कि शांति बनाई रखी जाएगी और घोषणा यही की गई थी कि इस क्षेत्र में शांति स्थापित होगी, लेकिन उसकी ये भी शर्त थी कि माहौल शांति का होना चाहिए। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके बारे में बहुत शक किया जा रहा है और शक यही है क्योंकि अफगानिस्तान के सरकार को जो कैदी छोड़ने थे तो अफगानिस्तान सरकार का कहना था कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया है, और तालिबान को जो छोड़ने थे वो ये था कि अफगानिस्तान अगर कैदी छोड़ेगा तो हम लोग छोड़ेंगे। तो यहां पर आपको साफ साफ एक रुकावट दिखाई दे रही है और अफगानिस्तान की जो अभी की सरकार है और जो तालिबान है उन दोनों में कोई मधुर संबंध नहीं है कि उसकी बात मान लेगी। और वैसे भी देखिए सामान्य सी बात है कि अगर सरकार को कुछ करना है तो उस समझौते में सरकार को तो शामिल किया ही जाना चाहिए था। खैर तो अब जबकि तालिबान ने हमला कर दिया, आप यूं कह लीजिए कि वो जो समझौता है कहीं ना कहीं तो संदेह के घेरे में आ चुका है। लेटेस्ट सी वैसे अमेरिका इससे पहले भी कह चुका है, परसों उसने कहा था कि अगर तालिबान ने शांति नहीं बनाए रखी और अपनी धरती का प्रयोग, धरती का प्रयोग नहीं कहना चाहिए, और इस तरह से अपनी आतंकवादी गतिविधियों में लगा रहा, तो फिर अमेरिका इस बार इतनी बड़ी सेना भेजेगा कि फिर मतलब उसके होशो हवास उड़ जाएंगे। मैं अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, यानी कि ऐसा अटैक उसके ऊपर कभी नहीं हुआ होगा, इस तरह से ट्रंप जी ने कहा है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जो खबर है वो ये है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप जानते होंगे, पिछले 4-5 सालों से इसका काफी नाम आ रहा है। यह एक प्रकार की मुद्रा है, डिजिटल करेंसी, और बहुत विचित्र बात यह है कि इस डिजिटल करेंसी को कोई कंट्रोल नहीं करता है, किसी सरकार या किसी बैंक से जुड़ी भी नहीं है। जैसे आप देखिए कि हमारे यहाँ की करेंसी बकायदे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई है, उसको मॉनिटर करता है, वो रेगुलेट करता है, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी वो किसी सरकार से नहीं जुड़ा हुआ है, किसी बैंक से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे लगातार ये बहुत तेजी के साथ फैलता चला जा रहा है। इसके रेट्स के उतार चढ़ाव को लेकर के बहुत बड़े संकट आए थे, तो हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने बकायदे क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग पर रोक लगा दी थी कि भारत में इसकी ट्रेडिंग नहीं होगी। कुछ लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कल ये कहा कि नहीं, वो ऑर्डर निरस्त किया जाता है और बकायदे क्रिप्टो करेंसी के भी ट्रेडिंग की इजाजत दे दी गई है। तो थोड़ी सी ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसमें होता यह है कि जो करेंसी है, लोग एक दूसरे के पास क्रिप्टो, जब आप क्रिप्टो करेंसी भेजते हैं तो आप कोई चीज नहीं भेजते, केवल इसका जो रिकॉर्ड है वो इनक्रिप्शन के जरिए, यानी कि सांकेतिक भाषा में होता है, इसे कोई भी डिकोड नहीं कर सकता। और जो बिटकॉइन है, नाम आपने सुना होगा, जो बिटकॉइन, यह भी एक प्रकार की क्रिप्टो, एक प्रकार की क्या मतलब, सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। तो थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी है, वैसे बेहतर होगा कि साइंस के तहत आप इसकी थोड़ी सी अच्छी सी तैयारी कर लें। देखिए, मेरी तो अपने समय की एक सीमा होती है। एक स्थान का नाम अगर आपने अखबारों में पढ़ा हो, गैरसैंण, ये एक स्थान है, ये उत्तराखंड की जगह है, चमोली जिले में है, और इसकी सबसे बड़ी अभी जो चर्चा में आया है वो ये है कि उत्तराखंड की सरकार ने इस स्थान को अपना समर कैपिटल घोषित किया है, यानी कि गर्मी के दिनों में यह राजधानी होगी। अब देखिए कि उत्तराखंड है, अगर गर्मी के दिनों में राजधानी होगी तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो पहाड़ पर ही होगी, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई अधिक होगी, काफी अधिक होगी, ताकि वहां मौसम जरा सा बेहतर हो। तो समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है 1750 मीटर के लगभग है, 1750 मीटर, तो वहां तो गर्मी के दिनों में मौसम बड़ा खुशनुमा रहेगा। तो इस तरह से गैरसैंण को उत्तराखंड ने अब अपनी समर कैपिटल घोषित कर दिया है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वह है कि इंटरव्यू में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले तो मैंने कल आप लोगों से इसके बारे में रिक्वेस्ट की थी, तो मेरे पास जो क्वेश्चन भेजे हैं उनका नाम है अशोक कुमार, और उनको मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, अपनी पूरी टीम की ओर से, और सच पूछे तो आप सब श्रोताओं की ओर से भी उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे सुना और सुनने के तुरंत बाद उन्होंने एक्शन लिया। तो अशोक कुमार, आपका बहुत बहुत इसके लिए आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, वो ये कि बहुत से स्टूडेंट के मेरे पास मेल आए हैं जो दिल्ली से बहुत दूर दूर रह रहे हैं, बहुत दूर, 400-500 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे हैं। उन्होंने जानना चाहा है कि सर, क्या हमें यूपीएससी जाना ही चाहिए, वो हमारे लिए जरूरी है। देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि आप इसके लिए एक्सक्लूसिव मत चाहिए, क्योंकि देखिए आप उतनी दूर से आएंगे, 2-3 दिन का समय लगेगा आपका, और फिर आपका खर्च होगा, मैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं जानता, लेकिन कम से कम जिन लोगों के लिए ये सुविधाजनक है वो तो इसका लाभ उठा ले। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं जाएंगे तो कोई बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, जो है, जिन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उन्हें इसका फायदा उठा लेना चाहिए, तो यही मेरा उनके लिए उत्तर है। अब देखिए, मैं इंटरव्यू पर आता हूं, लेकिन मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इंटरव्यू के पैटर्न के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। और सबसे पहले कहना ये चाहूंगा फ्रेंड्स, कि आप ये कभी भी अपने दिमाग में मत लाइएगा कि यार पहले प्री तो क्वालिफाई कर लें और फिर मेन तो क्वालिफाई कर लें तब इंटरव्यू के बारे में सोचेंगे। नहीं, ये जो प्रिपरेशन है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, ये इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है, एकीकृत तैयारी है, यानी कि आपको प्री, मेंस, इंटरव्यू सबको एक साथ लेकर चलना होगा। और इंटरव्यू तो इस मायने में अनोखा ही है कि आप एक दिन में इसकी तैयारी कर ही नहीं सकते। आपके दिमाग में अगर यह विचार है कि इंटरव्यू बेसिकली क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है, मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और हम लिखकर उत्तर देते हैं, और इंटरव्यू में बोल कर प्रश्न पूछे जाते हैं और हम बोलकर उत्तर देते हैं, तो मुझे लगता है कि आप इंटरव्यू के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। इंटरव्यू बेसिकली देखिए वो इनर व्यू है, आपके अंदर की वो जांच करना चाहते हैं, और जांच करने के लिए अब आपसे कुछ बातचीत तो वो करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप जाकर के बैठे और आपको देख लिया और उन्होंने भेज दिया कि ठीक है हमने कोई कैमरा था और उस कैमरे में आपके अंदर की तस्वीर ले ली, अब हमारा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, राइट? तो जो क्वेश्चन आंसर है उसको आप इंटरव्यू मत समझिए। मैं जो क्वेश्चन आंसर के बारे में आपको बताऊंगा वो एक संवाद की एक शैली है, और डेफिनेटली संवाद की जो शैली या कह लीजिए प्रकार है उसके लिए तो आपको अपने को तैयार करना होगा, और इसकी तैयारी आप कर सकते हैं 10-15 दिन में, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस जिस तरह से पूछे जाते हैं मैं भी उसकी व्याख्या करूंगा, व्याख्या सहित आपको बताऊंगा। लेकिन जो आपके अंदर है उसकी तैयारी आप 1-2 दिन में नहीं कर सकते, उसकी एक लंबी तैयारी होती है दोस्तों, क्योंकि जो आंतरिक बदलाव होता है वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, वो बहुत ही चुनौती से भरी हुई चीज होती है, बहुत चुनौती से भरी हुई चीज। तो आपको इंटरव्यू को इसी रूप में लेना चाहिए, राइट? अब देखिए कि इंटरव्यू और जो मेन एग्जामिनेशन आप देते हैं, क्वेश्चन आंसर वहां भी है, क्वेश्चन आंसर यहां भी है, लेकिन मुख्य अंतर क्या है? जो मेन एग्जामिनेशन का आपका जो पेपर है वो सबके लिए है और सबके लिए एक जैसा है। जितने भी स्टूडेंट मेन एग्जामिनेशन लिख रहे होंगे सबके पास एक ही जैसा क्वेश्चन पेपर है ना, हाँ उनके उत्तर अलग अलग होंगे, ठीक है कोई बात नहीं, वहां पर्सनालिटी से कोई लेना देना नहीं, वो आपके माइंड को टेस्ट करना चाह रहे हैं, पर्सनालिटी है ही नहीं। लेकिन इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू तो एक एक से बात की जा रही है, एक एक से बात की जा रही है, तो सीधी सी बात है कि जहां एक एक से बात की जाएगी वहां जो क्वेश्चंस भी होंगे वो एक एक के हिसाब से होंगे, इसे समझने की कोशिश कीजिए। वहां ऐसा नहीं है कि उन्होंने क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना ली है और सभी स्टूडेंट से वो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो जो क्वेश्चंस का सिलेक्शन करते हैं किस स्टूडेंट से किस तरीके के क्वेश्चन किए जाएं, तो उनके वो जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न बेसिकली वो स्टूडेंट ही उन्हें प्रोवाइड करता है। आपको लगता होगा कि मेंबर्स ढूंढ रहे हैं क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नॉट एट ऑल, वो स्टूडेंट ही कहता है कि आप मुझसे इस तरह के प्रश्न पूछिए, मुझे मालूम है कि मेरी इस बात पर अभी आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन शायद मैं और अच्छे तरीके से अपनी बात को विस्तार के साथ जब रखूंगा तो आपको यकीन हो जाए। तो दोस्तों अब इसके लिए मुझे वक्त दें, इसलिए नहीं कि मुझे इस पर विचार करना है बल्कि इसलिए क्योंकि अब मेरा वक्त हो चुका है। इसी विषय पर हम लोग कल आगे बातें करेंगे और तब तक के लिए मैं आप सबसे अनुमति चाहूंगा, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।